Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बनी आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जिंदगी का जो आहार है वही हमारी जिंदगी के विचार को क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, वो इतना ज्यादा फायदेमंद क्यों है, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति।
ओम शांति,
स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
धन्यवाद
प्रोफेसर साहब। जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट की, अब मेरी अपनी चॉइस है, मेरा अपना निजी मामला है, मैं जो खाऊं उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
अनायका जी, जब हम अपनी निजी चॉइस की बात करते हैं
जी,
निसंदेह नो डाउट कि हर आदमी आजाद है, जो वो खाना चाहे खा सकता है, जब खाना चाहे खा सकता है, जैसी खाने की उसकी इच्छा हो, जितनी उसकी जरूरत है उसके हिसाब से वो खा सकता है।
बिल्कुल।
लेकिन जो बात आपने कही, जो हम लोग कई लोगों से सुनते भी हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत ओपिनियन है, व्यक्तिगत चॉइस है, हमारा निजी मामला है, हमारी अपनी पसंद है, जो हमें प्यारा लगेगा, जो अच्छी चीज़ लगेगी हम खाएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे, ये तर्क लोग नॉन वेज खाने वाले देते हैं
जी।
लेकिन मैं सीधी सी बात उन्हें कहना चाहूँगा, आप ज़रा ध्यान से सोचिए, हमारी आज़ादी तब तक है जब तक हमारी काम से, हमारी उस आज़ादी से दूसरे का नुकसान नहीं होता।
बिल्कुल।
और यहाँ आप देख लीजिए, हम आज़ाद हैं खाने के लिए, लेकिन जब हम खा रहे हैं तो नुकसान तो दूर, छोटा मोटा नुकसान तो दूर, आप किसी की हत्या कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, आप किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं, बहुत उसको पेन दे रहे हैं। तो ये भी तो वही बात हुई ना। साथ में मान लो कोई एक व्यक्ति है जो ड्राइविंग कर रहा है, कार चला रहा है, वो कह सकता है कि मैं आज़ाद हूँ, मेरी अपनी चॉइस है कि मैं किधर को गाड़ी चलाऊँ, कब चलाऊँ, नो डाउट उसकी चॉइस है, कहाँ खड़ी करूँ कहाँ नहीं खड़ी करूँ, सब उसकी चॉइस है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी आप सोचो तो इसके कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही नहीं भी है
जी।
वो आज़ाद है गाड़ी चलाने में, लेकिन उसे चलानी तो लेफ्ट साइड ही पड़ेगी ना। वो आज़ाद है गाड़ी चलाने में, लेकिन जब ट्रैफिक लाइट आएगी, रेड लाइट आएगी, वहाँ उसको रुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं रुकेगा तो उससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। वो आज़ाद है गाड़ी चलाने में, लेकिन कहीं से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, पुलिस को पता है कि सामने से जुलूस आ रहा है, वहाँ ट्रैफिक ले जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो वहाँ ले जाता है, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा?
बिल्कुल।
गाड़ी चलाने वाला आज़ाद है कि वो कहीं भी गाड़ी को रोक सकता है, लेकिन वो सड़क के बीचों बीच तो नहीं गाड़ी रोक सकता, उसके लिए पार्किंग स्थान पे जाना पड़ेगा। उसी तरह इंसान आज़ाद है कि क्या उसे खाना है क्या नहीं खाना है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिसको खाकर हम दूसरे को जीने के अधिकार को छीन रहे हैं, हम अपने भोजन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए दूसरे को दुख का अधिकार दे रहे हैं, उससे सुख छीन रहे हैं, उसकी जिंदगी छीन रहे हैं, तो ये इंसानियत नहीं है।
ओमकार जी, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट की, इसके अंदर ये भी कहा गया है कि वो अपने आप में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है, दोनों का अपना अपना एक पहलू है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को क्लब करके अगर हम अपना डाइट क्रिएट करें तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, इज़ दिस राइट?
जहाँ तक आपने कहा वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है
जी।
आप जितने भी नॉन वेज खाने वाले दुनिया के लोग हैं, वो केवल नॉन वेज से जीवन नहीं जी सकते, उन्हें अपनी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को खाना ही पड़ता है।
अच्छा।
केवल नॉन वेज से आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। और जहाँ तक वेजिटेबल्स का सवाल है, आप वेजिटेबल्स, ग्रेन प्रोडक्ट्स और प्लांट्स से अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, तरह तरह की चीज़ें दी हैं, एक से एक बढ़कर बढ़िया से बढ़िया वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, वेजिटेरियन डाइट्स में रेसिपीज़ दी हुई हैं, उनको हम यूज़ करके अपने जीवन को चला सकते हैं। और आप देखेंगे जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर भी है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर वेजिटेरियन खाने के हिसाब से बनी हुई है। अच्छा। भगवान ने जो हमें ये शारीरिक रचना दी है उसको आप देखिए, वो उन जीव जंतुओं से कभी भी मेल नहीं करती जो नॉन वेज खाते हैं। हमारा जो आप देख लीजिए, हमारे नाखून हैं, हमारे नाखून वैसे नहीं है जैसे शेर के बड़े चाकू से भी तेज नाखून होते हैं, कितने नुकीले होते हैं, क्योंकि उसने मीट को काटना होता है। हमारे दांत भी वैसे नहीं हैं जो मीट को खा सकें, हमारी आंतें भी वैसी नहीं हैं जो मीट को पचा सकें। हमारी जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो कहते हैं 24-25 फीट लंबा होता है, और वो इतना लंबा है कि उसमें अगर मीट चला जाए तो उसको बाहर आते आते बहुत टाइम लग जाता है। और मीट की खासियत है कि वो बहुत जल्दी सड़ने वाली चीज़ है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इतने जल्दी नहीं सड़ते, मीट बहुत जल्दी सड़ता है। और वो जितना लंबा हमारे पेट में रहेगा उतनी ज़्यादा उतनी पहले वो सड़ेगा, ज़्यादा देर तक सड़ा हुआ अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा और अनेक तरह की बीमारियाँ पैदा करेगा। तो इसलिए ना तो हमारी आंतें वैसी बनी हैं, ना हमारे दांत वैसे हैं, ना हमारे नाखून वैसे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, जो मीट खाने वाले जीव जंतु हैं वो किसी तरल पदार्थ को लेते हैं, किसी लिक्विड या पानी को पीते हैं, तो किस तरह से पीते हैं, वो जीव से उसको चाट कर पीते हैं। और जो वेजिटेरियन खाना खाने वाले हैं, इंसान भी है, वो पानी पियेंगे, वो होंठों से पियेंगे। तो दोनों में फ़र्क है। हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिस्टम है, वो नॉन वेज खाने के लिए जब बना ही नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नॉन वेज खाने को अपने जीवन का क्यों अंग बनाए बैठे हैं? क्यों हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारी बॉडी केवल और केवल वेजिटेरियन खाने के लिए बनी है? आज हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, जब किसी को कोई बीमारी लग जाती है कहते हैं आप नॉन वेज खाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि नॉन वेज खाने के कारण बहुत सी बीमारियां आज दुनिया में हैं, मोटापा है, डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैं, इन सब के पीछे नॉन वेज ही तो है। हाई कोलेस्ट्रोल आपको देगा और कई तरह की प्रॉब्लम्स देगा, फैट बढ़ाएगा। तो उससे बचने के लिए जो सबसे बेटर डाइट है, सबसे सुटेबल डाइट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केवल और केवल आपकी वेजिटेरियन डाइट ही है।
पर प्रोफेसर साहब, ये भी कहा गया है कि कई बार डॉक्टर्स ही हमें कहते हैं कि आपको नॉन वेज खाना है, वो रेकमेंड करते हैं कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको इन स्पेसिफिक विटामिन्स की ज़रूरत है जो आपको नॉन वेज में ही मिलेगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, अगर आप बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नॉन वेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। तो ऐसे में इफ़ इट्स रेकमेंडेड बाय अ डॉक्टर और बाय अ जिम पर्सन, तो वो गलत है या वो सही?
देखिए नायिका जी, जहाँ तक डॉक्टर्स की ओपिनियन की राय ओपिनियन है, वो हर 5 साल बाद बदलती रहती है, और वो भी उनकी हर डॉक्टर की अलग होती है। जो नॉन वेज खाने वाले डॉक्टर होंगे उन्हें लगता है कि नॉन वेज बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो खाते हैं, और जो वेजिटेरियन खाने वाले डॉक्टर्स हैं वो आपको कभी भी नॉन वेज खाने की सलाह नहीं देंगे। और इस दुनिया में, इस कुदरत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इतनी चीज़ें हैं कि केवल नॉन वेज से ही वो चीज़ प्रोटीन आपको मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप प्रोटीन, मैंने कहा, सोयाबीन से मिलता है, दालों से मिलता है, बहुत से मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन मिलता है। तो नेचर ने हमें इतनी चीज़ें दे रखी हैं, हम क्यों नॉन वेज के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों नॉन वेज से ही अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं? हमारे पास जब और चीज़ें उपलब्ध हैं, अल्टरनेटिव हैं, तो हम क्यों उसको खाएं?
पर ओमकार जी, जब हम बात करते हैं मेडिसिन की भी, आजकल अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैप्सूल्स जो बनते हैं उनके अंदर में कंपल्सरी, कोई भी दुनिया का कैप्सूल हो उसके अंदर कंपल्सरी या तो फिश ऑयल होता है, या तो स्नेक ऑयल होता है, या तो जेलेटिन होता है। ये कोई ना कोई मात्रा में, कोई ना कोई तरीके से आज वेजिटेरियन इंसान भी नॉनवेज को अपने अंदर इनहेल कर रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो दवाइयों में वो चीज़ें ऑलरेडी सीमित हैं, वो उसके अंदर पड़ी हैं और वो खा लेते हैं। तो अननोइंगली अगर मैं नॉनवेज खा रही हूँ तो वो मेरे लिए सही है?
एक है नोइंगली अपराध करना, एक है अननोइंगली अपराध करना। अपराध तो अपराध है, लेकिन अगर आप जानबूझ के, आपको पता है कि इस चीज़ में ये है, फिर भी आप खा रहे हैं, चाहे वो आप एज ए मेडिसिन ले रहे हैं, तो मैं तो कभी भी इसकी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ऐसी चीज़ों को लो। मेडिसिन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका अल्टरनेट होती हैं, तो क्यों ना हम उन पे जाएं, हम उनको यूज़ करें, क्यों वही चीज़ हम लें जिनमें नॉन वेज यूज़ किया जा रहा है। अगर हमें पता नहीं है, अनजाने में कर लिया तो बात अलग है, लेकिन अगर पता है कि इसमें ये चीज़ यूज हो रही है, इस मेडिसिन में ये चीज़ यूज हो रही है, तो हम उसकी देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, और अगर वो नहीं है तो हम उसको ना लें। ऐसे इतिहास में बहुत से एग्जांपल्स हुए हैं, महात्मा गांधी का हुआ है, बर्नार्ड शाह का हुआ है, जिनको कहा गया कि आपको ये खाना पड़ेगा, आपको महात्मा गांधी के लिए कहा गया कि आपके बेटे को ये नहीं दिया जाएगा नॉन वेज, तो वो मर जाएंगे, उनको लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं अपने बेटे की जान को बचाने के लिए किसी को मार देता हूँ तो मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ, मैं अपने बेटे को मरना स्वीकार करूँगा लेकिन उस किसी की जान लेना स्वीकार नहीं करूँगा। और इतिहास गवाह है कि बेटे को कुछ नहीं हुआ।
सही बात है।
तो डॉक्टर्स के ओपिनियन एक जैसी नहीं होती है, डॉक्टर्स के सर्वे भी अलग अलग हैं। बहुत से लोग कहेंगे वेजिटेरियन खाना अच्छा है, बहुत से कहेंगे नॉन वेज खाना अच्छा है, लेकिन आपकी आप अपनी बॉडी को देखिए, आपकी बॉडी के लिए क्या सुटेबल है, कौन सा आपको मोर कंफर्टेबल है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक वेजिटेरियन खाना खाने से फील करते हैं या नॉन वेज खाने से फील करते हैं, कौन सा आपको अच्छा है, वो आप आपकी अपनी चॉइस है। वहाँ आप देखेंगे जैसे आप मीट खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, आप ज़्यादा आलसी बनेंगे, ज़्यादा सुस्त बनेंगे, उसको पचाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब वेजिटेरियन खाने की बात आएगी बड़ी आराम से डाइजेस्ट होगा और आपको ज़्यादा फुर्तीला बनाएगा, ज़्यादा चुस्त बनाएगा, ज़्यादा एक्टिव आप फील करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे।
जी प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर में एक और चीज़ मैंने देखी है कि उनके जब वो शरीर छोड़ रहे होते हैं, सपोज़ आज अगर मैंने अपने कसाई को जा कर के दे दिया कि ये मेरा एनिमल आपको मैंने बेच दिया, 10 से 12 दिनों के अंदर अगर वो कट रहा है तो उन्हें वो फीलिंग्स आने लगती है, उन वो भी समझने लगते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो सपोज़ अगर आज मुझे पता चल जाए कि मैं मरने वाली हूँ या मुझे कोई मारने वाला है 12 दिनों के अंदर, तो मेरे सारे संकल्प, नेगेटिव, वो डर, वो भय, वो एंजाइटी, वो सारे इमोशंस कितने सारे आने लगते हैं, वैसे ही उस एनिमल के अंदर भी आने लगते होंगे। और जब हम उसका सेवन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम पर, ये आप हमें बताइए।
जैसे ही उन्हें वहाँ पहुँचाया जाता है, कसाई के पास बेच दिया जाता है, तो उनके अंदर वो फीलिंग आने लगती है कि अब हमें मार दिया जाएगा, अब हमें ये लोग जीने नहीं देंगे। तो आप सोच लीजिए किस तरह के संकल्प, किस तरह की चिंता, किस तरह की बद्दुआएं उनके मन में हम मारने वालों के प्रति या खाने वालों के प्रति निकलती होंगी। आप अपने लिए सोच लीजिए, कभी हमें को बता दे कि आपको 10 दिन बाद कोई आदमी आएगा और आपके गर्दन पे छुरा मार के आपको तलवार से काट के ख़त्म कर देगा, तो वो 10 दिन हमारे कैसे बीतेंगे, किस तरह के माहौल में, किस तरह का डर, किस तरह की इमोशंस, किस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर होंगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस तरह की इमोशंस, उस तरह की फीलिंग्स उस बेजुबान जानवर के अंदर भी तो आती है।
सही बात है।
वो भी कितनी टेंशन से, कितनी चिंता से गुजरता है वो 10 दिन, जब वो वेट करता है कि अगले 10 दिनों में उसका नंबर लग जाएगा, उसे तलवार से, उसे छुरी से काट दिया जाएगा।
जी।
तो वो जहरीले पदार्थ, जहरीले केमिकल्स उसकी बॉडी में निर्माण होते हैं उस टेंशन में। आप देखेंगे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जब उसको मारने का टाइम जब उसका नज़दीक आता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके मुंह से झाग बाहर आने लगता है, इतना डर का माहौल, वो बार बार चिल्ला रहा होता है डर के माहौल में। तो ऐसे में उसके अंदर ऐसे जहरीले पदार्थ बाहर उसकी अंदर पैदा होते हैं, जो उसके खून में ऑब्जर्व हो जाते हैं, जो उसकी मीट में ऑब्जर्व हो जाते हैं, और वो जहरीले पदार्थ जब व्यक्ति खाता है उस मीट को, उसके अंदर भी जाते हैं, और यहाँ तक रिसर्च हुई है कि वो बीमारियों का रूप भी ले लेते हैं। वो बीमारियाँ अगर उसको अच्छी तरह से पकाया ना गया, पकाने के बाद भी वो जहरीले जो पदार्थ हैं उसमें रह जाते हैं और हमें नुकसान करते हैं।
पर प्रोफेसर साहब, ये भी कहा गया है कि आज हम जी भी रहे हैं तो खाने के लिए जी रहे हैं, और अगर खाना अगर नॉनवेज के रूप में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी कहा गया है, ये लोगों की भ्रांतियां हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
नॉनवेज खाना हमारे भोजन का अंग ही नहीं है। अगर हम, कई लोग कहते हैं कि खाने बने किसके लिए, आपने भी यही बात उठाई
जी,
कि बने किसके लिए, खाने के लिए तो बने, तो ये सोचना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर हम इस तरह की सोच रखते हैं कि हमारे खाने के लिए बने हैं जानवर। नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें भगवान ने हमारे इस सृष्टि रूपी रंगमंच में हमारे साथ इनको भी भेजा है और ये हम एक दूसरे की मदद करने के लिए बने हैं। ये हमें कुछ देते हैं, बकरी हमें दूध देती है, ऊन देती है, गाय हमें दूध देती है, अगर हम इनको मार रहे हैं ये तो इनके साथ विश्वासघात है, धोखा है। हम कैसे इन्हें मार सकते हैं, वो भी अपने पेट के लिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए। हमारे भोजन के लिए ये नहीं बने हैं, और खासकर दुनिया में इतनी चीजें जब हैं तो हम इनको क्यों खाएं। ये तो हमारे परिवार का
ऑप्शंस है, हमारे पास
बहुत ऑप्शंस है।
एग्जैक्टली। पर प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं पशुओं की, ऐसा भी कहा गया है कि अगर पशुओं को हमने खाया नहीं, उनके मांस बना करके हमने खाया नहीं, तो वो बढ़ते जाएंगे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम मनुष्यों से ज्यादा पशु होने लगेंगे, ऐसा सही है कहना?
ये लोग भी वही तर्क देते हैं जो नॉनवेज खाते हैं कि एक ना एक दिन अगर इनको रोका ना गया, काटा ना गया, खाया ना गया, तो इतने मुर्गे दुनिया में हो जाएंगे, इतनी भेड़ बकरियां हो जाएंगी कि हमें ना खाने के लिए अन्न मिलेगा, ना चलने के लिए रहने के लिए जगह, चारों तरफ यही यही हो जाएंगे। लेकिन ये कोई लॉजिकल बात नहीं है।
ओके।
दुनिया में इंसान भी तो इतने बढ़ गए हैं, क्या हम इंसान को खाना शुरू कर देंगे? जिस तरह हम इंसान के बारे में नहीं सोच सकते, तो इनके बारे में कैसे सोच सकते हैं? नेचर ने, कुदरत ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, उस बैलेंस में हर सिस्टम फिट है। यहाँ पर किसी की संख्या बढ़ने वाली नहीं है, जितनी है हम उनको उल्टा बढ़ाते हैं, उनके लिए पोल्ट्री फार्म हम खोल रहे हैं, वो तो नहीं खोल रहे, हम तो आर्टिफिशियल तरीकों से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदाइश करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फार्म बना के, ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो सके, हम बना रहे हैं, हम उनको ज़बरदस्ती तो नहीं, वो अपने आप आ रहे हैं। और कुदरत में एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जंगली जानवर, इतने जंगल हैं दुनिया में, बहुत से लोग वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, बहुत से जानवर, और जो पालतू हैं वो लोगों के घरों में एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये बेतुकी सी बात है जो ये लोग कहते हैं कि इतने लोग इतने हो जाएंगे तो होगा क्या।
जी ओमकार जी, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, आज अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, कई ऐसी जगह है, जैसे आप बात करें ग्रीनलैंड की, ग्लेशियर्स जो भी है हमारे, वहाँ पे अन्न की है ही नहीं, मतलब कोई भी तरीके से अन्न का अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम मांसाहार बन रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं?
बहुत सी जगहें हैं इस धरती पर जहाँ पर इंसान को रहना नहीं चाहिए लेकिन वो रह रहा है
जी,
चाहे उनकी कोई भी मजबूरियाँ हो। ग्रीनलैंड की बात आपने की, सहारा के रेगिस्तानों की बात आपने की, जहाँ बर्फ ही बर्फ है या रेत ही रेत है, जहाँ वनस्पति है ही नहीं, प्लांट्स है ही नहीं, तो ऐसी जगह पे क्या मीट खाना चाहिए, क्या वहाँ नॉनवेज होना जरूरी है या नहीं है? ये सवाल भी बहुत टाइम से लोग पूछते आए हैं और इसके ऊपर डिस्कशन होती रही है
जी।
अब अनायका जी, आप सोचिए, धरती पे इतनी स्थान है, इतना लैंड है, चाहे जितनी भी पॉपुलेशन धरती पे हो जाए, लेकिन धरती के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अच्छे अच्छे स्थानों पर जहाँ जीवन जीने की व्यवस्था है, वहाँ रहकर हम सारी पॉपुलेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पे हम जाएं क्यों? मान लो किसी को अंटार्कटिका जाना पड़ता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उन्होंने वहाँ कुछ रिसर्च करनी है जिससे इंसानियत को कोई फ़ायदा हो जाए, तो वो जाएँ, ज़रूर जाएँ, लेकिन वहाँ मीट खाना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आजकल तो इतना पैकेट फूड मिलता है, आप ऐसा फूड ले जा सकते हो जो 6-6 महीने खराब नहीं होता, तो आप उसको ले जाओ, आप क्यों नॉनवेज की तरफ मुड़ रहे हो?
तो ओमकार जी, आपके हिसाब से अगर हम ऐसी सिचुएशन में अगर कैरी करें फूड, तो वो भी अच्छे ऑप्शन है,
क्यों नहीं कैरी कर सकते
जी?
आजकल फास्ट फूड लोग इतना खाते हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, और हम ये बहाना दे रहे हैं कि जी वहाँ खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि वहीं आप उगाया जाए खाना। अब आप देखिए, जहाँ नॉनवेज दुनिया में ज़्यादातर खाया जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यहाँ बहुत से कंट्रीज़ हैं और भी जहाँ नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ सबसे ज़्यादा अनाज भी वहीं पैदा होता है, तो वहाँ तो अनाज की कोई कमी नहीं है, वो तो और देशों को भी अनाज सप्लाई करते हैं। और जहाँ तक भारत जैसे देश की सवाल है, जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ आप अनाज इतना पैदा कीजिए, इतने खेती के नए नए तरीके अपनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो और अनाज ही लोग खाएं। ऐसे स्थानों पे हम जाएं क्यों जहाँ पर केवल दूसरी चीज़ें हैं ही नहीं? मजबूरी में जाना पड़ता है तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, हम फूड ले जा सकते हैं।
जी पर ओमकार जी, जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, उसके अंदर एक और चीज़, एक और पहलू आ गया है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा अन्न खाएंगे, ज़्यादा हम वेजिटेरियन खाएंगे, तो ऐसा ना हो जाए कि अन्न की भी कमी हो जाए। तो ये एक भ्रांति है या एक सच है?
ये कितनी भी आज पॉपुलेशन हो जाए, नेचर के पास इतनी कैपेसिटी है कि जितने भी लोग दुनिया के हैं सबका पेट वो भर सकती है।
अच्छा।
और आप देखेंगे इतना अनाज हर साल खराब हो जाता है, इंडिया में इतना अनाज खराब हो जाता है जो कहीं यूज नहीं आता। बहुत से लोग चाहे भूखे रह जाते हैं लेकिन वो गोदामों में अनाज भी पड़ा रहता है, वो कहीं किसी के काम नहीं आता कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण। तो अनाज की कमी नहीं है, अनाज दुनिया में बहुत है। और जब से ये इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, इतना अनाज हम हर साल पैदा करते हैं कि जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उससे भी 1.5 गुना 2 गुना लोगों को हम अनाज खिला सकते हैं। तो ये सोचना कि अनाज की कमी है इसलिए हम मीट खा रहे हैं, ये सही नहीं है। और जहाँ तक बात आती है जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया की, तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके लिए हम ये कहें कि हम कुछ लोगों को मीट खिला दें और कुछ लोग वेजिटेबल्स खिला दें तो बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कि ज़्यादा अन्न कौन खाता है? जिनको नॉन वेज, जिनका हम सेवन करते हैं, जिसको हम चिकन के रूप में ले रहे हैं, तो कितना वो एक मुर्गा, कितना पोल्ट्री फार्म में कितना अनाज उसको खिला दिया जाता है, उतना उससे ज़्यादा तो इंसान को खिलाया जाए तो अन्न की कमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मॉडर्न वे में अगर किसी देश में है भी कमी अनाज की, तो आजकल नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की, उसका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कीजिए, ना कि लोगों को ये कहिए कि आप नॉन वेज खाइए।
ओमकार जी, जब हम बात करते हैं मांसाहारी की, ऐसा कहा गया है कि आदि मानव जो थे वो मांसाहारी थे, तो आज अगर हमारे एंसेस्टर्स ही अगर मांसाहारी है तो हम मांसाहारी हो रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं?
अनायका जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। जो हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, जो हम सब ने जानकारी ली कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, पहले जो मानव था, आदि मानव था, जंगलों में रहता था और उसे मजबूरी में कच्चा मांस खाना पड़ता था क्योंकि उसे और चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन वो कौन था? वो तो एक असभ्य व्यक्ति था जो शिक्षित नहीं था, जिसे एजुकेशन नाम का पता नहीं था, सभ्यता डिवेलप नहीं हुई थी।
Correct.
और उस वक्त उसके पास कोई च्वाइस नहीं थी
जी।
लेकिन आज आप बाजार में जाइए, आप एक से एक बढ़कर बढ़िया से बढ़िया वेजिटेबल्स, बढ़िया से बढ़िया फ्रूट्स, बढ़िया से बढ़िया डिशेज आपको मिल जाएंगी।
Correct.
तो आज तो हमारे पास ऑप्शन है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी। और हम ये तर्क दें कि वो खाता था, वो तो असभ्य था, वो तो अभी विकसित नहीं हुआ था, उसमें तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन हम तो अब सभ्य हो गए हैं, हम तो सिविलाइज्ड सोसाइटी के मेंबर हैं, हम तो अब एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो हम में और उसमें क्या फ़र्क हुआ? अगर हम, वो भी खाता था और हम भी खाते हैं, तो फ़र्क केवल इतना हुआ कि वो कच्चा खाता था और हमने पकाने के तरीके ढूंढ लिए और हम उसको पकाकर होटल्स में या घर में डाइनिंग टेबल में बैठकर सजाकर खा रहे हैं, खा वही रहे हैं जो वो खा रहा था, हम भी वही खा रहे हैं, तो ये तो समझदारी नहीं होगी। साथ में आदि मानव की बात आपने कही, तो हम तो ये भी कहते हैं डार्विन की थ्योरी के अनुसार कि इंसान बंदर था, लेकिन बानर तो कभी भी मांसाहारी नहीं हुआ है, बानर तो हमेशा ही शाकाहारी हुआ है, तो हमें तो कम से कम फिर अगर उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी शाकाहारी होना चाहिए, हमें भी वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए। और असली में जो मैं आपको बात बताऊं, एक तरफ तो हम कहते हैं डार्विन की थ्योरी की बात, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि भगवान ने इंसान को अपनी तरह बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। जैसे भगवान दया का सागर था, शांति का सागर था, करुणा का सागर था, ऐसे उसने अब इंसान को भी बनाया, तो इंसान को वो कैसे ऐसे बना सकता है कि वो दूसरे की हत्या करे? कैसे वो दूसरे के ऊपर मारने वाला और गलत खाने वाला उसको बना सकता है। तो इंसान जो था वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे वो वैसे नहीं थे जैसा हमने किताबों में पढ़ा है। हमारे पूर्वज बहुत महान थे, हमारे पूर्वज देवी देवता थे, हम देवी देवताओं के वंशज हैं। और देवी देवताओं के बारे में आप जरा सोचिए, जब उनको भोग भी लगाया जाता है तो उनकी भोग की थाली में 36 प्रकार के पकवान फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कभी भी आप मेवे होते हैं, कभी भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनको कभी मीट का भोग लगाया जाए। तो हमारे पूर्वज शिकारी नहीं थे, हमारे पूर्वज वो नहीं थे जो जंगलों में रहते थे, हमारे पूर्वज देवी देवता थे। और देवी देवता थे तो देवी देवताओं का भोजन कितना प्योर था, कितना सात्विक था, वैसा ही भोजन हमें भी स्वीकार करना चाहिए। और वेजिटेरियन डाइट को ही इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने मन में अच्छे थॉट्स लाने के लिए, अपने मन की प्योरिफिकेशन के लिए भी, अपने को महानताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भी वेजिटेरियन डाइट को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने ओमकार जी। जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, उसके अंदर में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है जो संकल्पों के द्वारा हमारे अंदर जाती है, और उसी तरह से नॉन वेज में इतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि जब हम उसे मार रहे होते हैं जब किसी जानवर को, तो उसकी सारी जो नेगेटिव संकल्प है वो भोजन के द्वारा हमारे अंदर आ जाती है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों जब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अपने आप में सीमित हैं। कई सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, जो हमें अगर हमारी डाइट के अंदर अगर हम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी डाइट बहुत हेल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ आप वेजिटेरियन अगर होंगे तो वेगन डाइट में आप कंप्लीट न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, लेकिन नॉनवेज से आप कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। उसमें कुछ प्रोटीन्स होगा और कुछ और सिंपल कंटेंट है, लेकिन कंप्लीट होल एंड सोल अगर आपको डाइट लेना है तो वो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट में है। इसी बात के साथ आज की कड़ी को हम एंड करते हैं, लेकिन हम इस एपिसोड को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।